ನಮಃ ಸಿದ್ಧೀಭ್ಯಃ ಯಾರ್ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕ ಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜನ್ಮ ಭೇದೋ ಮೇ ತಿರ್ಯಂಚಿ ಗತಿ ಕೇ ಗರ್ಭಜ್ ಜನ್ಮ ಮೇ ತೀನ್ ಭೇದೋ ಕಾ ಕಥನ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ತಿರ್ಯಂಶ ಗತಿ ಮೇ ಜರಾಯುಜ್ ಅಂಡಜ್ ಔರ್ ಪೋತ ಜನ್ಮ ಕೆ ಭೇದ ಸೆ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹೈ ಅಂಡಜ್ ಮೇ ಕಲ್ ಚರ್ಚಾ ಹುಯಿ ಥಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಜ್ ಔರ್ ಭೋಗಭೂಮಿಜ್ ದೋನೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಜೀವ ಅಂಡಜ್ ಹೋತೆ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಭೋಗಭೂಮಿಜ್ ಮೇ ಥಲ್ಚರ್ ಔರ್ ನವಚರ್ ಜೀವ ಹಿ ಪಾಯೆ ಜಾತೆ ಹೈ ಜಲ್ಚರ್ ನಹೀ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮೇ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಏಕ್ ಶೇ ಲೇಕರ್ ಪಾಂಚ್ ತಕ್ ಹೋತೆ ಹೈ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಪಹಿಲಾ ಔರ್ ದೂಸರಾ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹಿ ಭೋಗಭೂಮಿ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಜೀವೋಂ ಕೋ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಜೋ ನವಚರ್ ಔರ್ ಥಲ್ಚರ್ ಜೀವ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಏಕ್ ಶೇ ಚಾರ್ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಹೋತೆ ಹೈ ಪಹಿಲಾ ದೂಸರಾ ಔರ್ ತೀಸರಾ ಚೌಥಾ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಪಹಿಲಾ ದೂಸರಾ ಔರ್ ಚೌಥಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಭೀ ತಿರ್ಯಂಶ ಪ್ರಾಣಿ ಯಹಾಂ ಸೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕಾ ಮರಣ ಕರ್ ಯಹೀ ಸೇ ಭೋಗಭೂಮಿ ಮೇ ಜಾತಾ ಹೈ ಪಹಿಲೆ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮರಣ ಕರ್ಕೆ ಭೀ ಭೋಗಭೂಮಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ದೂಸರೆ ತಥಾ ಚೌಥೆ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಭೀ ಮರಣ ಕರ್ ಭೋಗಭೂಮಿ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಜ್ ತಿರ್ಯಂಚ ಅಸಂಘಿ ಕಾ ಕಥನ ಹಮೇ ಸಮಜ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಅಸಂಘಿ ತಿರ್ಯಂಚ ಜೀವ ಕೋ ಅಸಂಘಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅಸಂಘಿ ಉಸ್ಕೋ ಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಏಕೀ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಹೋತಾ ಹೈ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಕ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಪಹಿಲಾ ವ ದೂಸರಾ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ದೂಸರಾ ಗುಣಸ್ಥಾನ ವಿಚಾರಣೀ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ದೋ ಮತ ಹೇ ಜಬ್ಕಿ ವೋ ಪಹಿಲೆ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಸೇ ಜನ್ಮ ಹೋತಾ ಹೈ ಯೇ ಜರಾ ಉಚಿತ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ದೂಸರೆ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಸೇ ಜನ್ಮ ಹೋನಾ ಯೇ ಉತ್ನಾ ಉಚಿತ ನಹೀ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮೇ ಸಂಗೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಅಸಂಗೀ ಅಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋತಾ ಹೈ ನೀಚೆ ಮ್ಲೇಚ್ ಖಂಡ ಕಾ ಕಥನ ಹೈ ಮ್ಲೇಚ್ ಖಂಡಜ್ ಮ್ಲೇಚ್ ಖಂಡಜ್ ತಿರ್ಯಂಚ ಜಲ್ಚರ್ ಥಲ್ಚರ್ ನವಚರ್ ಸಂಗಿ ಅಸಂಗಿ ಸಂಗಿ ಅಸಂಗಿ ದೋನೋ ಕೋ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಸಂಗಿ ವ ಅಸಂಗಿ ಅಸಂಗಿ ಕಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೈ ನಹೀ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನಹೀ ಹೈ ವಿಶೇಷ ಮೇ ಹೈ ವಿಶೇಷ ಮೇ विशेष में क्या लिखा है, म्लेच्छ खंडजो में संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्त अपर्याप्त तिर्यंच व सम्मूर्छन अपर्याप्त मनुष्य व विकलत्रय पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यंच जीव नहीं होते, किंतु संगी पंचेंद्री गर्भज पर्याप्तक तिर्यंच जीव व संगी असंगी गर्भज पर्याप्तक जलचर थलचर व नवचर तिर्यंच जीव होते हैं, नवचर भी होते हैं। अंतर इतना ही है कि 850 म्लेच्छ खंड में से पांच भरत क्षेत्रों व पांच ऐरावत क्षेत्रों संबंधी 50 म्लेच्छ खंडों में तथा 10 विज्यार्ध श्रेणियों में सदा एक दुष्मा सुष्मा काल का परिवर्तन विद्यमान होने से वहाँ के मनुष्य ने तिर्यंच ने तथा पेड़ पर्वत आदि के अवगाहना में अवसर्पिनी उत्सर्पिनी के अनुसार घटन बढ़न होता है। सौनन 6 सब होते हैं, परंतु 160 विदेह क्षेत्र संबंधी 800 म्लेच्छ खंडों में इस प्रकार का घटन बढ़न रूप काल का परिवर्तन न होकर वहाँ के मनुष्य तिर्यंच आदि की अवगाहना सदा स्थिर होती है। सौनन 6 सब होते हैं, शेष विषय जीवों के अस्तित्व आदि का समान रूप से होता है। विदेह क्षेत्र में भी म्लेच्छ खंड है, वहां काल परिवर्तन नहीं है। केवल 10 ये भरत ऐरावत संबंधी जो क्षेत्र हैं, यहां पर काल का परिवर्तन माना गया है। तो म्लेच्छ खंड में 6 काल का परिवर्तन है कि एक ही काल का परिवर्तन है, ये ध्यान में रखना है। म्लेच्छ खंड में कितने कालों का परिवर्तन है? एक उत्सर्पिनी का तृतीय काल का परिवर्तन वहाँ चलता है और अवसर्पिनी का चतुर्थ काल का परिवर्तन वहाँ चलता है। यानी वहाँ चतुर्थ काल आता है, ऐसा नहीं समझना कि चतुर्थ काल यानी एक ही दिमाग में रहता है कि जो तीर्थंकरों का जन्म होता है और मोक्ष मिलता है, बस सीधा हम वहाँ पहुँच जाते, ऐसा नहीं। काल का परिवर्तन तो कहीं भी हो सकता है। म्लेच्छ खंड में चतुर्थ काल के आदि से लेकर चतुर्थ काल के अंत तक का परिवर्तन रहता है। यानी अवसर पिने में सबकी ऊंचाई वगैरह का घटते घटते आना, आयु वगैरह का भी घटते घटते आना, ये परिवर्तन म्लेच्छ खंड में है और उत्सर पिने में बढ़ते बढ़ते जाने का है। तो ये बीच में जो आर्य खंड में ये काल निकलते हैं, पंचम काल, छठा काल और इसके बाद उत्सर्पिनी में पहला काल, दूसरा काल, इन कालों के व्यतीत होने तक वहाँ की ऊंचाई स्थिर होती है, कहाँ की? म्लेच्छ खंड की और विजयार्ध पर्वत की। विजयार्ध पर्वत में भी वही काल चलता है, अवसर्पिनी का चतुर्थ काल और उत्सर्पिनी का तृतीय काल, परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ अभी पंचम काल चल रहा है भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में भी पंचम काल चल रहा है। पांच भरत और पांच ऐरावत में अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। तो यहां तो पंचम काल है, वहां जो है अभी उनकी ऊंचाई आयु वगैरह स्थिर है। ये कब तक स्थिर रहेगा? तो ये 21,000 वर्ष पंचम काल का, छठे काल का 21,000 वर्ष, पहले काल का 21,000 वर्ष और द्वितीय काल का 21,000 वर्ष। ये 21-21 चार बार, यानी कितने वर्ष? 84,000 वर्ष तक, 84,000 वर्ष तक उनकी आयु न घटेगी न बढ़ेगी, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ही वह चतुर्थ काल शुरू हो जाएगा तो उनकी ऊंचाई बढ़ने चालू हो जाती है। और यहाँ जो चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती जन्म लेता है, वह दिग्विजय के लिए जब म्लेच्छ खंडों में जाता है तो उनकी इस चक्रवर्ती की जो शरीर की ऊंचाई रहती है उतनी ही ऊंचाई वहाँ पर भी होती है, क्योंकि चक्रवर्ती भी यहाँ पर कब होते हैं? चतुर्थ काल में। और उत्सर्पिणी के तृतीय काल में चक्रवर्ती होते। जो जो चक्रवर्ती यहाँ रहेंगे और उनकी जो ऊंचाई आयु आदि रहेगी, उतनी ऊंचाई आयु आदि के मनुष्य वहाँ पाए जाते हैं। जब ये दिग्विजय के लिए जाएंगे तो अपने बराबर के मनुष्य ही हाइट वाले वहाँ मिलेंगे, और यह क्रमशः काल के बढ़ते बढ़ते उत्सर्पिणी में जो भी चक्रवर्ती होंगे, यहाँ उनकी जितनी ऊंचाई रहेगी वहाँ भी उतनी रहेगी, ऐसा होता रहता है। किंतु म्लेच्छ खंड जो 800 म्लेच्छ खंड हैं विदेह क्षेत्र संबंधी 8 म्लेच्छ खंडों में ऐसा नहीं होता, वहाँ काल परिवर्तन नहीं है। तो वहाँ मनुष्यों की आयु ऊंचाई आदि समान ही पाई जाती हमेशा। जब भी मनुष्य पैदा होगा तो 500 धनुष तक बढ़ेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं। आयु पूर्व कोटि से लेकर जघन्य आयु भी हो सकती है, कर्म भूमि है, मध्यम आयु कितनी भी हो सकती है। कोई कोई आदमी पूर्व कोटि तक जीता है, कोई पल्योपम तक भी जी सकता है, नहीं पल्योपम नहीं, ये हजारों करोड़ों की संख्या में जी सकता है, तो अंतर्मुहूर्त तक भी जी सकता है। हाँ, दिग्विजय वहाँ भी चक्रवर्ती होते हैं 12 चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए जाते हैं तो वो चक्रवर्ती 500 धनुष का, और म्लेच्छ खंड के जो मनुष्य होते हैं वे भी 500 धनुष के ही होते हैं। वहाँ पर न तो आर्यखंड के मनुष्यों की ऊंचाई घटती बढ़ती है, और न ही विजयार्थ पर्वत के, वहाँ भी विजयार्थ पर्वत एक एक है ना, न ही विजयार्थ पर्वत के मनुष्य की ऊंचाई घटती बढ़ती है और न ही म्लेच्छ खंड की। आयु और ऊंचाई समान ही रहेगी उधर। और सौनन की अपेक्षा से 6 प्रकार के सौनन कर्म भूमि में प्राप्त होते हैं, इसलिए विजयार्थ पर्वत, विदेह क्षेत्र और म्लेच्छ खंड, इन तीनों क्षेत्रों में जो ऊंचाई आयु होती है वो सरी समान इक्वल होती है। कहाँ? विदेह क्षेत्र में, म्लेच्छ खंड में कहाँ, विदेह क्षेत्र में कि यहाँ? हाँ, भैरत ऐरावत का पूछो तो यहाँ का चक्रवर्ती जब वहाँ जाएगा, समान आयु और समान ऊंचाई वाले मनुष्य रहेंगे वहाँ भी। चक्रवर्ती छोड़ करके और कोई नहीं जाते, उनके साथ वो भी उनके रहते हुए बीच में, वही तो कोई नहीं जाते, ऐसा कोई वर्णन आगम में नहीं आता। चक्रवर्ती के साथ जाते हुए तो मिलता है, लेकिन अन्य टाइम में अन्य कोई मनुष्य जाते हैं क्या, ये आपका प्रश्न है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया। काल द्रव्य अनंत शक्तिशाली स्वयं अपने शक्ति से, अपनी उपादान शक्ति से परिवर्तन करता है, अखंड है, अपने उपादान से स्वयं परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करने के लिए अन्य द्रव्यों को भी कारण बनता है। अखंड तो है वो, लोकाकाश में उसका अस्तित्व होने से उसको लोकाकाश नाम पड़ा, पर उस खंड नहीं होता उसका, आकाश यहाँ भी है वहाँ भी है। काल परिवर्तन से क्या क्या लेना, भूमि, पर्वत, पेड़ पौधे, पशुओं की ऊंचाई अवगाहना, मनुष्यों की अवगाहना, इन सब में लेना चाहिए। भूमि भी घटन बढ़न होती है, ये भी लेना चाहिए। भूमि समय शिखर भूमि इतनी थोड़ी ऊंची थी, उसका भी हाइट कम हो गया है काल परिवर्तन के हिसाब से। पर्वत के ऊपर रहने वाले पेड़ पौधे भी समय समय पर छोटे ही होते जाते हैं। मनुष्य की अवगाहना के हिसाब से पेड़ पौधे होते हैं, उनकी भी तो अवगाहना है, और विकलत्र जीवों की भी अवगाहना होती है। पूर्व पूर्व में बड़े रहेंगे, बाद बाद में छोटे। आदिनाथ भगवान के काल में जो मूंगी होती थी वो एक भैंस के बराबर होती होगी। हाँ, 500 धनुष का वो दिखाई देगी। 2000 धनुष ऊपर से एक चींटी जा रही है तो एक भैंस के बराबर होती होगी, और आज की चींटी तो उनको दिखेंगी ही नहीं। हाँ, क्या बोले? हाँ, 850 मिलीच खंड। हाँ, मिलीच खंड के मनुष्यों को गुणस्थान एक ही है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद आर्यखंड में ही होता है, और वह भी प्रथम सननधारी सम्यक्तों का कोई सवाल नहीं, कोई भी सम्यक्त चल सकता है, परंतु आर्यखंड में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है और सम्यक्तों के साथ होता है। सम्यक्तों के साथ ही होता, वहां सम्यक्त नहीं है वहां। यहां पर आकर के संस्कारित होकर के तो जा सकता है, यहां आने के बाद हो सकता है, वहां रहते हुए एक ही गुणस्थान वर्ती रहेगा, वहां से कोई भी मोक्ष नहीं जाता। वज्रषभ नारा सनन धारी होगा तो वह भी संस्कारित होकर के मोक्ष जा सकता है, रत्नत्रय धारण कर सकता है वो। उस समय तो हम थे नहीं। हाँ, भरत क्षेत्र में क्यों आए थे? निमंत्रण दिया होगा। कृष्ण जो है ना त्रिखंड आधिपति, त्रिखंड उनके कौन है? एक आर्यखंड और आसपास के दो मिलीच खंड। उस तरफ तो वो जा नहीं सकते क्योंकि त्रिखंड आधिपति है। दो मिलीच खंड और एक आर्यखंड के अधिपति होने से कृष्ण ने मिलीच खंडों के राजाओं को भी निमंत्रण दिया होगा, और वो किसी न किसी मार्ग से कृष्ण ने बुलवाया होगा, ये जा सकते हैं ना, तो इनके पास जाने आने का साधन होना ही चाहिए, उसके माध्यम से उनको बुलवाया निमंत्रण देकर। श्री कृष्ण के माध्यम से आए हो, कोई ना कोई चक्रवर्ती चाहिए तब आते हैं वो, क्योंकि उनके पास साधन रहता है। इस समय अपन बुला नहीं सकते, कोई साधन नहीं अपने पास। त्रिखंड अधिपति नारायण जो होता है, प्रति नारायण त्रिखंड के अधिपति और नारायण त्रिखंड के अधिपति, तीन खंड के अधिपति होते हैं। नहीं नहीं, हाँ, शरीर सहित भी आ सकता है। चक्रवर्ती जब वहां दिग्विजय के लिए जाते हैं तो वहां की कन्याओं के साथ विवाह करके भी आते हैं। वो 60,000 कुछ कन्याओं के साथ विहार करके वहां से आए, ऐसा कथन मिलता है। तो वहां से आई हुई वो कन्याएं यहाँ पर जब पुत्रों को जन्म देती हैं तो उनके पुत्र भी दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। वज्रसेव नारद सनंदधारी पुत्र उत्पन्न हुए और उनको मोक्ष मिल गया। मनुष्य भी आ सकता है उधर से, आना चाहिए, लेकिन बहुत कम जीव आते हैं। आर्यखंड में ही नहीं आ रहे हैं सभी, तो उधर से क्या आएंगे। आर्यखंड में ही भाव उत्पन्न नहीं होते कि धर्म सभा में जाएं और धर्म समझे, उधर से क्या आएंगे। वहां तो इससे ज्यादा माहौल भौतिकता होती है, भौतिकता का माहौल होता है। यह आत्मा शरीर का गुलाम है, शरीर सुख को ही ढूंढता है, शरीर की सेवा करता है, नौकर बना रहता है और शरीर राजा रहता है हमेशा। शरीर रूपी राजा ये जैसा आदेश देगा वैसा आत्मा को सुनना पड़ता है, और जब तक सुनेगा तब तक आर्यखंड नहीं मिलेगा। म्लेच्छ खंड में कौन जन्म लेते हैं? शरीर को ही गुलाम जिसने बनाया है वो, या शरीर का गुलाम है जो वो? हम पुद्गल द्रव्य के अंदर मोह के कारण अटके हुए हैं तो हमारा जन्म अच्छे स्थानों पर नहीं होगा। जो धर्म से अनुराग रखता है वही आर्यखंड में पैदा होता है। हाँ, शरीर तो मिल जाता है म्लेच्छ खंडों के मनुष्यों को भी, पर धर्म धारण नहीं कर सकता, इसलिए धर्म की रक्षा वो नहीं करेगा तो मोक्ष भी नहीं जाएगा। शरीर धर्म का साधन जरूर है, पर धर्म का साधन बना तो ले जीव, जीव धर्म धारण कर ले और उस धर्म की रक्षा के लिए शरीर का साधन बना ले, ऐसा जीव करता नहीं है। दोनों रहते हैं, दोनों रह सकते हैं। म्लेच्छ खंड है, खाने पीने में कोई विवेक थोड़ी रह सकता है, दोनों रह सकते हैं। आर्यखंड मतलब कर्म भूमि है, दोनों रह सकते हैं। परंतु यह भी विषय कहीं भी चर्चा में नहीं आई कि म्लेच्छ खंड में मांसाहारी ही होते हैं, ऐसा भी नहीं आया। आहार तो होता है, तो आहार तो करते ही हैं, शाकाहार होते हैं क्या मांसाहारी, इसकी कोई चर्चा नहीं। पर मांसाहारी होते हैं इसे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि कर्म भूमि है, आदमी कैसे भी रह सकता है। पाप पुण्य का कोई उनको ज्ञान नहीं है, परमार्थ तत्व का धर्म का कुछ भी संस्कार नहीं है, इसलिए मांसाहारी नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं। जो शरीर का सेवक होता है वो मांसाहारी होता ही है, जो आत्मा की सेवा करता है वो विचार करता है कि कर्म बंद होगा, पाप कर्म लगेगा, मुझे काटना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। धर्मात्मा ही सोच सकता है मांसाहार बुरा है ऐसा। जिसको धर्म मालूम नहीं, हिंसा मालूम नहीं, पाप मालूम नहीं, पुण्य मालूम नहीं, उसको क्या हिंसा है? ये जीव है, इसको दुख होता है, इसको मारना नहीं चाहिए, ये विचार आता ही नहीं, वो मांसाहारी बनते। आर्यखंड में जो मांसाहारी बन गए, ये भोग भूमि के त्रियंशों को देख कर सीख सीख करके बन गए। भोग भूमि के त्रियंश जब कर्म भूमि में कन्वर्ट हो गए ना, उस समय वो आप परस्पर में शिकार खेलने लगे। आसानी से खाने को नहीं मिलता था तो एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार करके खाने लगा। कर्म भूमि में मांसाहारी बन गए तिरेंच, भोग भूमि में तो सभी तिरेंच शाकाहारी थे। नवचर और थलचर जितने भी प्राणी थे, जीव थे, वो सब शाकाहारी, एक भी मांसाहारी नहीं था भोग भूमि में। बाद में हुआ, पहले तिरेंच मांसाहारी बना। और मनुष्य का शरीर तो शाकाहार के अनुरूप है, इसने अपने व्यसन के कारण, व्यसन के कारण। व्यसन क्या होता है? ये करके देख लूं, वो करके देख लूं, वो क्या होता है, ये क्या होता है, व्यर्थ के काम करना व्यसन है। शाकाहार से जी सकते हैं, फिर भी मांसाहार खाने से क्या होता है, उसको भी खाना, तो ये व्यर्थ के काम है। और व्यर्थ में बहुत बड़ा पाप और बुराई जीवन में होती है, उस बुराई को सहन करता हुआ पाप करता है। हाँ, नहीं आता वो, कई जगह पर नहीं आता। कहाँ पर? वहां पर भी तो शाकाहारी रहते हैं। तो क्या हुआ, मांसाहारी रहते हैं फिर? 100% मांसाहारी रहते होंगे। हाँ, मनुष्य के रूप में त्रिरंश ने जन्म लिया, या त्रिरंश के रूप में मनुष्य ने जन्म लिया, वहां सब मांसाहारी ही रहते हैं 100%। हाँ, ये अंडज जीवों का कथन हो गया, यानी पर्याप्तक अंडज जीव पर्याप्तक अवस्था में पहले गुणस्थान में ही रहता है, असंगी के लिए है। संगी असंगी पहले गुणस्थान वाला ही होता है, संगी भी हो असंगी भी हो, इसमें म्लेच्छ खंड में पर्याप्तक अवस्था में एक ही गुणस्थान, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला दूसरा गुणस्थान, संज्ञा संगी। ठीक, अब पोत जन्म का देखें। कर्म भूमिज त्रियंच संगी जलचर थलचर नवचर, पोत जन्म वाले भी नवचर होते हैं, ऐसा उदाहरण प्राणी का नहीं मिलता। पोत जन्म वाला कौन है? सभी उड़ने वाले पक्षी ही दिखाई देते हैं, तो इसमें कौन है? तो टिप्पणी में क्या दिया है, देखो, पोत नवचर जीवों का कथन नहीं मिलता, श्वेतांबरों में मिलता है, जैसे चर्म पक्षी वाले भारंड भिड़ाल जलुका बलगुली आदि जीव, बलगुली आदि जीव ये पोत जन्म वाले हैं, ऐसा मिलता है। भारुंड पक्षी, चर्म पंख वाले, देखो ये रात को जो उड़ते हैं ना, मराठी में क्या बोलते हैं उनको, वो बड़े भी रहते हैं छोटे भी रहते हैं, दो जाति हैं उसमें, बड़े बड़े भी रहते हैं ये। हाँ, उल्टे टांगते हैं पेड़ के ऊपर, चमगादड़, चमगादड़ बोलते हैं ये। चमगादड़ सीधा ही जन्म लेते हैं, ये पोतज हैं, पोत जन्म वाले हैं चमगादड़। इनके अंडे दिखाई नहीं देते, पोत जन्म है इनका, जराइज भी नहीं अंडज भी नहीं, पोत जन्म वाले हैं। चमगादड़, हाँ, अंडे नहीं होते इसके, हाँ, सीधा ही जन्म लेता है, पोत जन्म है, जीव सीधा ही आता है गर्भ से। ये हो गया, इनको पोत जन्म वाले पक्षियों को कर्म भूमिज हैं, तो गुणस्थान कितने बनेंगे? पर्याप्तक अवस्था में पहले से 5 गुणस्थान हैं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला दूसरा गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान भी है। सम्यक शिक्षित होकर के आने वाला जीव अपर्याप्तक अवस्था में दूसरा गुणस्थान हो सकता है। और भोग भूमिज तिर्यंच संघी में पर्याप्तक अवस्था में चार ही गुणस्थान रहेंगे, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान, ये तीन गुणस्थान रहेंगे। कर्म भूमिज तिर्यंच असंघी, इसमें जलचर थलचर नवचर पर्याप्तक अवस्था में पहला गुणस्थान, असंगी है ना इसलिए, और निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में दो गुणस्थान होना चाहिए, दूसरा होता नहीं होता इसमें मतभेद बता दिया गया है। और कुभोग भूमिज तिर्यंच संबंधी कथन ये है कि यहाँ पर नवचर जीव, जलचर तो होता है, थलचर भी हो जाएगा, जलचर नहीं, भोग भूमि है ना, कुभोग भूमि है, जलचर नहीं है, थलचर और नवचर। नवचर में कौन नवचर, तो यहाँ टिप्पणी में जो दिया था वही लेना चाहिए, वही चर्म पक्षी वाले, चमगादड़ वगैरह, ये पोतज हैं, कुभोग भूमि में भी रहते हैं और युगल पैदा होते हैं, ये युगल पैदा होते हैं और दो युगल पैदा होते ही दोनों का मरण होता है, वो इधर जन्म देते हैं और इधर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किंतु कर्म भूमि में ऐसा नहीं होता, चमगादड़ कई बार जन्म देता है। अपर्याप्तक अवस्था में कुभोग भूमि के संगी पंचेंद्री पोतज जीवों को, पोत जन्म वाले जीवों को नवचरों में और थलचरों में पर्याप्तक अवस्था में कितने गुणस्थान, एक से चार गुणस्थान हैं। देखो वो भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, वो भूमि से भी जीव स्वर्ग जाते हैं, सम्यक दृष्टि हो तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक ही गति में उत्पन्न होंगे, देव गति, अन्य गति नहीं है कुभोग भूमि के जीवों को और भोग भूमि के जीवों को। भोग भूमि में तीन प्रकार हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन भोग भूमि, किंतु कुभोग भूमि में कोई प्रकार नहीं है। ये कुभोग भूमि कहाँ रहते, लवण समुद्र में, लवण समुद्र में कितने हैं, लवण समुद्र में 48। कैसे हैं ये, अंतरंग तट की ओर, अंतरंग तट में 24 और बहिरंग तट में 24, गोल आकार से, दूर दूर गोल आकार से ऐसा। और लवण कालोदक समुद्र में भी है, कालोदधि समुद्र में भी ये 48 है, 48 96, 96 से अधिक कुभोग भूमियाँ है नहीं, केवल 96 ही संख्या है इनकी, केवल 96 संख्या है। ये कुभोग भूमियाँ हैं, ये तीन और ये तीन, कितने हो गए, 3 × 12, और विदिशा में तीन तीन, ये तीन ये तीन ये तीन और ये तीन, 24 हो गए। ये अंतरंग तट की ओर, और एक सेट बताना पड़ेगा ऐसा, समुद्र निकाल कर, तो दो सेट हैं ये 24, जम्बूद्वीप के तरफ 24 और धाती खंड के तरफ 24, समुद्र में ही हैं ये सभी 48, 48 से ज्यादा कुभोग भूमि नहीं है लवण समुद्र में, कालोदक समुद्र में 48, यहाँ 48, 96 से अधिक है ही नहीं, लेकिन भोग भूमियां कितनी है, भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि कितनी है, उत्तम भोग भूमि 1 2, यहां पर तो 2 हो गए, ऐसे कितने हैं, यहां 2 तो यहां 4, यहां 4, 4 4 8, यहां 8 8 सोलह, सोलह और ये दो अठारह है, दो जम्बूद्वीप में। हाँ यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो। हाँ अच्छा, ऐसा निकालना, यहाँ दो, यहाँ दो, इधर भी दो और इधर भी दो, ये कितने हो गए, दस, ढाई द्वीप में। हाँ नहीं नहीं उत्तम भोगभूमि गिन रहे हैं, कितने हैं, दस उत्तम भोगभूमि, दस मध्यम भोगभूमि और दस जघन्य भोगभूमि, ये ढाई द्वीप के अंदर हैं, तीस, तीस, तीस तो ढाई द्वीप के अंदर हैं। ये कहाँ हैं, ये देखो, ये मध्यम भोगभूमि, ये नदी है बीच में, इस नदी के इस पार ये जो हरा हरा दिखता है ये, और इसके नीचे भी जो हरा हरा दिखता है ये भोगभूमि है, ये जघन्य भोगभूमि और नहीं मध्यम भोगभूमि और ये जघन्य भोगभूमि, ये है जघन्य भोगभूमि। जम्बूद्वीप में जघन्य दो हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मध्यम दो हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ दो, यहाँ दो है, ठीक है ना, दो दो हैं, तीस है ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप के बाहर लेंगे तो असंख्यात। जघन्य भोग भूमियों की संख्या ढाई द्वीप की अपेक्षा से दस है, और मध्य लोग की अपेक्षा संपूर्ण लेंगे तो असंख्यात है, परंतु मध्यम भोगभूमि और उत्तम भोगभूमि ये दस दस ही, कुभोगभूमि छियानवे, कुभोगभूमि छियानवे, और कुभोगभूमि में उत्पन्न होने वाले त्रिरंच भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं, कुभोगभूमि में त्रिरंच भी पाए जाते हैं और मनुष्य भी, केवल मनुष्य ही होते हैं ऐसा नहीं, त्रिरंच भी हैं मनुष्य भी हैं। हाँ वो त्रिरंचों का आकार प्रकार का वर्णन नहीं आया, पर त्रिरंच होते हैं ये तो आया है, पर हाथी 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 की तरह होगा, परंतु मनुष्य हाथी के मुख वाला और धड़ जो रहेगा नीचे का वो मनुष्य आकार का रहेगा। हाँ पैर दो, किसी ने त्रिरंच आयु का बंद किया है? और बाद में कुपात्र में दान दिया तो ये जाएगा कुभोगभूमि में, कुपात्र में दान दिया तो ये जाएगा कुभोगभूमि में, कुभोगभूमि का त्रिरंच बनेगा, और कुपात्र दान नहीं दिया तो कर्म भूमि का त्रिरंच बनेगा, कर्म भूमि का त्रिरंच, म्लेच्छखंड का त्रिरंच बन सकता है, आर्यखंड का त्रिरंच बनना भी दुर्लभ है। हाँ बन सकता है, लेकिन कैसा त्रिरंच, दुखी त्रिरंच बनेगा, सुखी त्रिरंच नहीं बनेगा, कौन, जो दान आदि भी नहीं दिया है, कुपात्र सुपात्र आदि में, कुपात्र में दान देंगे तो कहाँ जन्म लेंगे, कुभोगभूमि में, वहां के त्रिरंच बनेंगे, और इसका फल कर्म भूमि में भी उत्पन्न होने का बताया है, सुखी त्रिरंच बनेगा, कर्म भूमि का भी यदि बन जाए तो सुखी त्रिरंच बनेगा, क्योंकि कदाचित ऐसा भी हो सकता है किसी ने त्रिरंच आयु का बंद किया और संख्यात वर्ष का ही बंद किया, असंख्यात वर्ष का बंद नहीं किया, और संख्यात वर्ष को बंद करने के बाद को पात्र में दान दिया तो कर्म भूमि का त्रिरंच बनेगा, कर्म भूमि का त्रिरंच बनेगा, तो क्या बनेगा, कैसा, किस प्रकार का त्रिरंच बनेगा, भोगवंत त्रिरंच बनेगा, भोगवंत यानी सुखी। हाँ गाड़ी में घूम के बैठकर घूमेगा सावकार के साथ, साहूकार के हाथ से खाना खाएगा, बिस्किट खाएगा, दूध पिएगा, और साहूकार पहले उसको अतिथि मानता है, बाद में खुद खाएगा लेकिन उसको पहले खिलाएगा। देखो ना, कुपात्र दान जब दिया था पहले कुपात्र को दिया था, फिर बाद में खुद खाए थे, इसलिए यहां पर भी वो सत्कार मिलेगा। साहूकार पहला खिलाएगा, बाद में वो खाएगा। वो भूमि का त्रिंच भी बन सकता है तो ऐसा बनता है। क्या बनता है? भोगवंत त्रिंच बनता है। वो गली का कुत्ता नहीं बनेगा, वो साहूकार के घर का कुत्ता बनेगा। कर्म फल देता ही है, कर्म फल देता है। जिस क्षेत्र में रखना चाहिए उसी क्षेत्र में ले जाकर रखता है। कर्म, ये त्रिरंचों का कथन पूरा हो गया। मिलेच्छखंड में पहला गुणस्थान, निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में पहला दूसरा गुणस्थान हो सकता है। अब इधर आते हैं, उपपाद जन्म का स्वामित्व देव और नारकियों को है। देवों में तीन प्रकार के देव भेद कर लेना चाहिए। भवनत्रिक के देव, 1 से 16 स्वर्ग व 9 ग्रवेक के देव, और 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तर विमानवासी देव। ऐसा तीन भेद क्यों किया? वैमानिक देवों में भी भेद कर दिया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों रहते हैं, इसलिए भेद हो गए। तो पहले स्वर्ग से लेकर 9 ग्रवेक तक, 16 स्वर्ग 9 ग्रवेक, यहाँ तक देव मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में देव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, एक भी देव मिथ्या दृष्टि वहाँ नहीं होता, इसलिए 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान को अलग से कहा है। भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, इसलिए इनको सेपरेट किया। भवनत्रिक में पर्याप्तक अवस्था में कितने गुणस्थान हैं? 1 से 4 गुणस्थान हैं। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में कितने गुणस्थान हैं? 1 से 2। दूसरे गुणस्थान के साथ भी कोई कर्म भूमि का त्रियंच या मनुष्य दूसरे गुणस्थान के साथ मरण करके भी जाएगा तो सम्यक तो रहित ही माना जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया क्या? नहीं, ये सिद्धांत है। देखो, कर्म भूमि का त्रियंच और कर्म भूमि का मनुष्य ही भवनत्रिक में जाता है, अन्यत्र से नहीं जाता है, भोगभूमि से नहीं। हाँ, भोगभूमि से भी जा सकता है, आर्यखंड का भी जा सकता है और भोगभूमि का भी जा सकता है, मिलेच्छखंड का भी जा सकता है। मिथ्या दृष्टि तो वहां से आकर यहाँ जन्म लेते समय भवनत्रिक में भोगभूमि से, आर्यखंड से, विदेह क्षेत्र से, आर्यखंड ही तो है वो भी, और 850 मिलेच्छखंड से आने वाले जीव भवनत्रिक में जन्म ले सकते हैं। तो मिथ्यात्व के साथ ही आते हैं, पहले गुणस्थान के साथ या तो दूसरे गुणस्थान के साथ आकर इनका यहाँ जन्म होता है। पार्श्वनाथ भगवान ने सांप को कौन सा मंत्र सुनाया? नमोकार मंत्र है, नमः सिद्धेभ्य। हाँ, पंच नमस्कार मंत्र नहीं, नमः सिद्धेभ्य, इतना ही मंत्र सुनाया। उनके मुख से एक ही मंत्र निकलता है, नमः सिद्धेभ्य, सिद्धों को नमस्कार। ऐसा नमस्कार मंत्र सुनाते ही वो मरण करके भवनवासी देव बन गई, नहीं भवनवासी बन गई एक, हाँ धर्मेंद्र भवनवासी है, और ये वो जो जीव और एक था वो यक्ष जाति के देवों में पैदा हो गया, तो एक भवनवासी बन गया और एक व्यंतर बन गया। व्यंतर व्यंतरों में भेद है, व्यंतर आठ प्रकार के हैं। व्यंतरहा किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। यक्ष आया ना नाम, यक्ष के अंदर जन्म लेता है, तो यक्ष के अंदर जन्म इनका हो गया और वो जीव भवनवासियों में चला गया। दोनों अलग अलग जगह हैं, तो फिर ये पति पत्नी कैसे हो गए? हाँ, ये पति पत्नी है क्या? नहीं है। यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी का मतलब जो यक्ष देवी रहेगी उसका यक्ष देव रहेगा, ये तो भवनवासी है। कहाँ का जोड़ दिया देखो, ये पति पत्नी जोड़ दिया। ऐसा पति पत्नी नहीं होते, भवनवासी देव के साथ भवनवासी देवी रहती है वो पति पत्नी है, यक्ष देव के साथ यक्षी रहती है ये पति पत्नी है। देव देवी, पति पत्नी नहीं बोलते वहां, क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी इसलिए कि विवाह के बाद ये संबंध होता है, वहां देव देवी बस। तो देव देवी का जो संबंध होगा वो एक ही जाति में बनेगा, और फिर ये कैसे जोड़ दिया गया ये सब विचार नहीं है, लिखो। नहीं, मध्य युग में क्या हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया है, मध्य युग में बहुत गड़बड़ हो गया, इसकी कल्पना की गई, कैसा भी जोड़ करके कल्पना कर दी गई, विचार नहीं किया गया। और प्रचार का माध्यम इतना दे दिया कि वो प्रधान हो गया और वीतरागी भगवान नीचे हो गए, ऐसा हो गया, बहुत अति प्रचार हुआ और वैसा ही था, माहौल भी वैसा था, क्योंकि उस समय कुछ न कुछ रिद्धि सिद्धि में लगे हुए लोग ज्यादा थे, क्योंकि किसी न किसी प्रकार कुछ सिद्ध करें और लोगों को चमत्कार बताएं, हाँ, प्रभाव डाले। वस्तु स्वरूप का अज्ञान बहुत था, अज्ञान कम था नहीं, बहुत था अंधकार, और उस समय के अंधकार को आज भी लोग भोग रहे हैं उसका परिणाम। अब प्रकाश अभी अभी आ रहा है 21वीं शताब्दी में, पिछली शताब्दी में भी नहीं रहा है, अभी अभी पता चल रहा है कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, जैन धर्म नहीं है, अभी पता चल रहा है। वीतरागी भगवान की पूजा ही जैन धर्म है, पंच परमेष्टि में देवों का स्थान नहीं है, है नमोकर मंत्र में नमो सव देवानम, एक और पद रख सकते थे, स्वर्ग में रहने वाले, भवनत्रिक में रहने वाले सभी देवों को, मतलब देव ही पूजनी, देव अगर पूजनी है तो नमो सव देवानम नमोकार मंत्र में आना चाहिए था क्या? नहीं, वंदनी ही नहीं है नमोकार मंत्र की अपेक्षा से। देखो, नमस्कार मंत्र तो नमस्कार मंत्र है, वहां पूजा नहीं है, कौन नमस्कार के योग्य है, ये नमोकार मंत्र ही बता रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे लिए क्या है? नमोकार मंत्र। तो ये ज्ञान होना चाहिए ना, ज्ञान के बिना आप चलोगे कैसे, जैन धर्म का पालन कैसे करोगे? नमोकार मंत्र नमस्कार मंत्र है, ये सबसे बड़ा शास्त्र और प्रामाणिक तो है। नमोकार मंत्र को प्रामाणिक समझते कि नहीं आप लोग? समझते हैं ना, तो उसमें कितने पद हैं? पांच पद हैं। और फिर देव कैसे वंदनीय हो गए? हाँ, करते हैं ना, नमस्कार का मतलब शब्द अलग है, पंच परमेष्टियों को नमस्कार करते समय का शब्द नमोस्तु है पंच परमेष्टियों को, ये नमोस्तु शब्द दूसरे को किसी को भी नहीं है, पांच को ही है। यदि है तो शास्त्र को है, देव शास्त्र गुरु और भगवान के प्रति भी, में तो भगवान के उसमें ही आते हैं, पंच परमिष्टि ही आते हैं, जिन बिंब वगैरह, तो इनको तो है, देव शास्त्र गुरु को नमोस्तु, अथवा नौ देवता कह दो, अरहं, पांच परमिष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इनको क्या बोलेंगे, नमोस्तु बोलेंगे। आरिका आदि हो तो वंदामी बोलेंगे, और छुल्लक ऐलक आदि हो तो इच्छामी बोलेंगे। वस्त्रधारी सबको इच्छामी ही था, कालांतर में कुछ शब्दों को अलग अलग कर दिया, जो इच्छामी के अर्थ में ही है वो। तो ये नमोस्तु नहीं कहलाता, जैसे वंदामी कह दिया, इच्छामी कह दिया, वंदना कह दिया, जय जिनेन्द्र कह दिया, ये कह सकते हैं। जो परिग्रहधारी जीव हैं, रागी हैं, उनको जय जिनेन्द्र, इच्छामी, वंदामी आदि ही शब्द हैं, नमोस्तु नहीं कहना चाहिए, और वंदनी पूजनी भी नहीं कहना चाहिए उनको। वस्त्रधारी जीव कोई भी वंदनी पूजनी नहीं होता, वंदनी का मतलब नमोस्तु, इच्छामी के योग्य होता है, आदर के योग्य होता। जैसे आप परस्पर में आदर भी करते हैं और जय जिनेन्द्र भी बोलते हैं, तो ये नमोस्तु थोड़ी कहलाया, ये वंदना थोड़ी कहलाया। आपने वंदना नहीं की, वंदन के योग्य तो पंच परमिष्टि ही हैं। आदर किया, किन शब्दों में आदर किया, जय जिनेन्द्र आइए, मतलब जय जिनेन्द्र मतलब क्या कह दिया उनको, जय जिनेन्द्र मतलब क्या बोल दिया उनको, क्या अर्थ है उसमें। हाँ, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान के समान तुम्हारे में भी जयवंत होने की शक्ति है, जयवंत हो जाओ, तुम भी भगवान बन सकते हो। देखो अन्य धर्मों में भी ये है, जय श्री राम कहते कि नहीं, अन्य धर्मों में भी है, वहां पर भी राम का ही नाम बोला जाता है, नमस्कार कोई नहीं करता, हाथ जोड़ना ये नमस्कार नहीं कहलाता, ये आदर कहलाता। हम पंच परमिष्टि को भी हाथ जोड़ रहे हैं तो ये नमस्कार थोड़ी है, नमस्कार तो नमोस्तु जो बोल रहे हैं वो नमस्कार है, ये आदर के सूचक क्रियाएं हैं, ऐसा ये आदर हो गया, चाहे पंच परमिष्टि को करो चाहे किसी को करो, ये आदर हो गया। परंतु भाव अलग अलग है, एक को इच्छामी के भाव हैं, एक को नमोस्तु के भाव। नमोस्तु का मतलब आप ही शरण हैं, आप गुण, आपके गुण नमस्कार के योग्य हैं, नमस्कार के नमन के योग्य हैं, आपके पास गुण हैं। कौन से गुण हैं, तो आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं, अरहंत हैं, मुनि को भी नमोस्तु, आप रत्नत्रय के धारी हैं, संयमी हैं, संयमी को ही नमोस्तु बोला जाता है। समझ में आ गए ना फर्क। तो जय जिनेन्द्र जो बोला जाता है ना, जय जिनेन्द्र, ये जय जिनेन्द्र परस्पर में आप लोग बोलते हैं, कोई व्यक्ति सामने आने पर बोलते हैं क्या, उनका स्टेचू रखकर बोलते हैं तो कोई भी जीव इंद्र भी आ गए, समोचरण में आ गए और किसी श्रावक से मिल गए, चतुर्थ काल की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, सामने आ गए तो इंद्र को क्या बोलोगे, जय जिनेन्द्र। जब देवों का इंद्र नायक है, देव नायक, उनको ही आप जय जिनेन्द्र बोलते हैं, तो उनके सेवकों को क्या बोलोगे, पूजा करोगे। जय जिनेन्द्र से ज्यादा कुछ भी बोला नहीं जा सकता, ये जैन धर्म का शास्त्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपन, ये सब रूढ़ी से आ रहे हैं, ये समझना। शास्त्रानुसार चर्या श्रावक को बनाना चाहिए, तो यदि शास्त्रानुसार चर्या बना लेता है तो उसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है, और नहीं बनते है तो सम्यक तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ये माना जाता है, ऐसा है। हाँ क्या है क्या नहीं है ये तो ज्ञान होना चाहिए ना, नहीं तो हम जो कर रहे हैं वो सही है ऐसी धारणा बैठ जाती है। तो विवेक का ज्ञान तो हाँ चलो बोलो, छोटा सा नहीं बड़ा सा भी कर लो। हाँ है ना, तो वो ही गलत हो गया है। अभी चर्चा हो गई ना, वो चिंतनी है कह दिया, एक भवनवासी बन गए और एक व्यंतर, ये यक्षक्षी कैसे हो सकते हैं परस्पर में? हो सकता है। देखो इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, सुन लो, पॉलिटिक्स नहीं है, ये काल परिस्थिति वश हो गई बात है। कैसे हो गई ये समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो, छोटा प्रश्न नहीं है ये, बहुत बड़ा आपका। पॉलिटिक्स नहीं है, एक समय था जिस समय हमको कुछ चमत्कार वगैरह अपने पास चाहिए थे दूसरे को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उसके बिना हम अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकते थे। उस समय में ये प्रचार अधिक हो गया तो वो रूढ़ हो गया। कोई भी बात एक बार प्रचार में आती है तो बहुत दिन तक बचती है, वो बहुत दिन तक जीवित रहता है, वो रूढ़ बन जाता है। उस रूढ़ विषय को ज्ञान आने पर ही हम हटाते हैं। अपने जीवन में आया है तो ज्ञान आए बिना हम कैसे हटाएंगे? ज्ञान आने पर ही व्यक्ति उसको हटाता है। ज्ञान जब तक नहीं आता तब तक वो चलता रहता है, शतमानों तक बचता है। तो इसमें भवनवासी, ये तो है, कथा तो यही बोलती है कि वो एक भवनवासी बन गया और एक व्यंतर बन गया। तो फिर इसको यक्ष यक्षी कैसे कह सकते? यक्षी नहीं तो यक्ष तो नहीं कह सकते, यक्षी तो है, यक्ष कैसे कहेंगे? तो किस ज्ञान में प्रकट हो गया? नहीं, केवल ज्ञानी ने ही ये कहा कि एक यक्ष बना एक यक्षी बनी। नहीं नहीं, यक्ष नहीं, भवनवासी बना और हाँ वो भ्रमित कर रहे हैं, देखो कितना हमको भी भ्रमित कर रहे, आप लोगों को तो शतमानों से किया है, बोलते समय भी छूट रहा है वो। ये देखो, कोई भी जीव त्रियंश गति में, वो वहां एक पति पत्नी के रूप में है, त्रियंश गति है, वहां पर नाग नागिन है। तीर्थंकर के माध्यम से जिनको नमोकार मंत्र सुनने को मिल गया वो कितने भाग्यशाली हैं? आपको सलेखना के टाइम में मंत्र सुनाने वाला कोई मिल जाए तो आप भाग्यशाली, सामान्य व्यक्ति भी मिल जाए भाग्यशाली, आपको जगाने वाला मिल जाए भाग्यशाली, जगा दिया, नमोकार मंत्र सुना दिया और उसी समय मरण हो गया, आप भाग्यशाली। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि हमारी संलेखना हो गई। संलेखना नहीं हुई है, ये तो एक मंदकषाय के साथ शुभ भावों से मरण हुआ, मंदकषाय और शुभ भाव रहे और मरण हुआ, ये संलेखना नहीं। संलेखना तो व्रत लेना, शरीर को क्षीण करना, कषायों को क्षीण करना, त्यागी हुई वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करना, ये सब वहां पर साधना है। उस प्रकार से जो मरण करता है वो तो संलेखना मरण है। ऐसे नाग नागिन को भी संलेखना हो जाए, शुभ भावों से मरण किए थे वो, नाग नागिन को संलेखना हो जाए, तीर्थंकर के माध्यम से संलेखना हो जाए तो कितना बड़ा भाग्यशाली। लेकिन वो संलेखना था क्या? संलेखना किया हुआ जीव भवनत्रिक में जन्म लेता है क्या? कौन से उसमें जन्म लेता है? हाँ, कल्पवासी देव होता है जिसकी संलेखना होती। संलेखनाधारी जीव नियम से सम्यक दृष्टि रहता है, संयमी रहता है, सम्यक तो और संयम दोनों के साथ मरण करता है वो, और नियम से वैमानिकों में जन्म लेता है, इसको संलेखना बोलते हैं। त्यागी को ही संलेखना है, व्रतधारी को ही संलेखना है, व्रत रहित को संलेखना है ही नहीं। व्रत रहित जीव चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, शुभ परिणामों से मरण कर सकता है। तो उसको कौन सा मरण कहेंगे? बाल मरण। और सम्यक तो रहित मरण करेंगे तो कौन सा मरण? बाल बाल मरण। अब उस नाग नागिन को मरण के काल में कौन सा गुणस्थान था? सम्यक दृष्टि थे क्या? वो पहला गुणस्थान था। सम्यक दृष्टि तो भवनत्रिक में जाता नहीं, ये नियम है, सिद्धांत है। और उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया तो शुभ भाव से मरण किया और देवगति का बंद किया, भवनत्रिक में जन्म लिया। जाते समय अशुभ लेशा होती है नियम से। देखो लेशा, लेशा कितनी होती है? छह लेशा होती है। छह लेशाओं में अशुभ लेशा होती है। यहां से जाते समय अपर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा, पर्याप्तक अवस्था में शुभ लेशा, एक पीत लेशा होती है, पीत लेशा। बस वहां पर चार ही लेशा हैं, एक पीत लेशा और क्या, एक पीत लेशा और निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में तीन अशुभ लेशा, कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशा। अब वो नाग नागिन मरे थे किस लेशा से मरे? कृष्ण नील कापोत में से एक लेशा थी, फिर भी उसके साथ मंद कषाय होने से शुभ भाव थे, भाव शुभ थे, लेशा अशुभ थी, अशुभ लेशा थी। तो शुभ परिणामों से शुभ भावों से मरण करके कहां जन्म लिए? भवनत्रिक में से एक यक्ष बना और एक जीव भवनवासी बना, व्यंतर बना, यक्षिनी बनी वो। ये विषय और भी सोचने लायक एक लेख है, उसको अवश्य पढ़ेंगे किसी दिन। क्या बने वास्तव में, बहुत तर्कनाएं दी। हाँ, समय हो गया। हाँ, लास्ट शुभ भाव है तो शुभ लेशा होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि निगोदी जीव को तीन ही लेशा बताया है, उसको वज्र ऋषभ नारायण सनन का बंद हो रहा है, भाव शुभ हो जाते हैं, शुभ कर्म का बंद होता है, लेशा तो अशुभ ही रहती है। अशुभ लेशा का अर्थ ये नहीं है कि भाव भी अशुभ हो, लेशा ये दर्शाती है कि कषाय की तरतमता उत्कृष्ट है, मध्यम है या जघन्य है, ये दर्शाती है। लेशा यानी उत्कृष्ट कषाय के उत्कृष्ट, मध्यम या जघन्य दशा अवस्था। और भाव का अर्थ दो, उसके साथ फिर शुभ भाव अशुभ भाव, और लेशा के अनुरूप, भावों के अनुरूप उसको स्थिति बंद और अनुभाग बंद पड़ जाता है जीव को। जिनवानी
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।